તારીખ 19/3/1995 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 833 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 108
શ્રી મદ્રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 833 ચાલતા હૈ આખિર કે તીન પેરેગ્રાફ બાકી હૈ अज्ञान से और स्वस्वरूप के प्रमाद से आत्मा को मातृ मृत्यु की भ्रांति है। मेरे पास अज्ञान से और स्वस्वरूप के प्रमाद से आत्मा को मृत्यु की भ्रांति है, यानी मृत्यु जैसी कोई चीज जगत में है ही नहीं। जिस मृत्यु के नाम से भी संसार के प्राणी भयभीत होते हैं, वास्तव में वो कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये तो अज्ञान से एक कल्पना उत्पन्न होती है। जैसे रस्सी में सर्प की कल्पना होती है तो भय होता है, फिर भी रस्सी आखिर में रस्सी रहती है, होती है। रस्सी में सर्प कभी नहीं होता, लेकिन जैसे रस्सी में सर्प का भय, सर्प की कल्पना होने से भय हो जाता है, वैसे ही जीव को मृत्यु की भ्रांति से भय हो जाता है। वास्तव में वो कोई चीज नहीं है, इसलिए वो कोई चीज नहीं है कि आत्मा अजर अमर एक शाश्वत पदार्थ है। वो आत्मा कोई दूसरी चीज नहीं है, निज स्वरूप है और वो शाश्वत है, हम शाश्वत हैं, फिर भय किस बात का है? जब हम कभी मरने वाले नहीं, मरने वाले क्या, हमको कभी कुछ होने वाला भी नहीं, कोई बाधा नहीं हो सकती। तो जिसको आत्मज्ञान होता है उनको मृत्यु का भय बिल्कुल ही नहीं होता। मृत्यु का भय तो उसको होता है कि जिसको वर्तमान पर्याय पर मोह होता है, उसको होता है कि ये जो पर्याय प्राप्त है, वो जो हमारी वर्तमान स्थिति है वो बिगड़े नहीं, उसका नाश नहीं हुए। लेकिन पर्याय तो स्वभाव से नाशवान है, चाहे समयवर्ती पर्याय हो, चाहे मनुष्य आदि दीर्घकालीन पर्याय हो, लेकिन पर्याय मात्र नाशवान है। वो पर्याय का स्वभाव है, जैसे आत्मा का शाश्वत स्वभाव है वैसे पर्याय का नाशवान स्वभाव है। शाश्वत रहने वाला का नाश नहीं होगा और पर्याय कभी अविनाशी नहीं होगे। दोनों द्रव्य पर्याय का यथार्थ ज्ञान होने से किसी भी प्रकार की चिंता, भय, खेद, शोक कुछ तो नहीं होगा, विकल्प भी नहीं होगा। भय शोक तो नहीं होगा, लेकिन विकल्प भी नहीं होगा। यथार्थ ज्ञान से हम निर्विकल्प हो जाएंगे। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं तो विकल्प करते हैं क्या कि ये कपड़े बदलने में दुख होगा या सुख होगा? कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल रूटीन में वो काम होता है। वैसे जो भी मोक्ष मार्गी धर्मात्मा को एक दो चार भव होते हैं वो रूटीन में हो जाते हैं, एक रूटीन कोर्स समझ लेते हो कि वो होने वाले हैं। क्यों हुए वो कोई चिंता का विषय नहीं, कोई विकल्प का विषय नहीं होता। अज्ञान से और स्वस्वरूप के प्रमाद से आत्मा को मात्र मृत्यु की भ्रांति है। उस भ्रांति को निवृत्त करके, उस भ्रांति का नाश करके, अभाव करके शुद्ध चैतन्य निज अनुभव प्रमाण स्वरूप में परम जागृत होकर ज्ञानी सदैव निर्भय है। ज्ञानी सदैव निर्भय ही होते हैं। कैसे निर्भय होते हैं? कि उनको मृत्यु की भ्रांति नहीं है तो मृत्यु का भय नहीं है। जिसको मृत्यु का भय नहीं हो उनको और किस बात का भय हो सकता है? फिर सबसे अधिक भय कोई प्राणी को होता है संसार में तो ये मृत्यु का भय होता है। जिसको मृत्यु का भय चला गया उसको दूसरे संयोग वियोग का भय होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो मामूली बात होगी। वो भय रहित, भय के दुख से रहित सुखी हो जाते हैं। उस भ्रांति को निवृत्त करके शुद्ध चैतन्य स्वरूप में, शुद्ध चैतन्य स्वरूप में, अकेले चैतन्य स्वभाव को, स्वरूप को, उस स्वरूप में परम जागृत होकर अनुभव करते हैं। और कैसा है उस स्वरूप के निज अनुभव प्रमाण है। ये जो शब्द आए हैं ये अनुभव के वचन अनुभव में से आए हैं। मेरा आत्मा का प्रमाण क्या? मेरा आत्मा है, मेरी आत्मा है और ऐसा है, उसका प्रमाण क्या? स्वानुभव प्रमाण। जैसा अनुभव में आता है और जितने क्षेत्र में अनुभव में आता है, शरीर प्रमाण अपना क्षेत्र है, उसमें अनुभव में आता है उतना ही अनुभव में आता है, पर उसमें जैसा है वैसा अनुभव में आता है। जैसा केवल ज्ञान में आत्मा ज्ञान में आता है वैसा नीचे चतुर्थ गुण स्थान में अनुभव में आता है। तो आत्मा का प्रमाण मैंने नाप, परिमाण जिसको कहते हैं, वो कितना है? कि निज अनुभव प्रमाण है आत्मा, ऐसा स्वरूप में परम जागृत हो करके, एकदम जागृत हो करके नाने सदैव निर्भय है। अब देखिए अनुभव होता है वो वर्तमान अवस्था में होता है। जिस अवस्था में अनुभव होता है वो अवस्था क्षणिक होती है। क्षणिक अवस्था में क्षण भर के लिए या क्षणार्ध के लिए जिस आत्मा का अनुभव होता है वो आत्मा शाश्वत है, त्रिकाल शाश्वत है, ऐसा एक क्षणार्ध में त्रिकाली का ज्ञान, त्रिकाल का ज्ञान हो जाता है। त्रिकाली का त्रिनोकाल का ज्ञान हो जाता है। कितने समय में? क्षणार्ध में, कि मैं शाश्वत हूं, मुझे कोई बाधा पहुंचा सके ऐसी किसी की पहुंच नहीं है मेरे में, ऐसा मैं चैतन्य वज्र आत्मा हूं। जैसे वज्र को कोई नहीं काट सकते ऐसे चैतन्य वज्र आत्मा है। ऐसे आत्मा को अनुभव करने वाले को जगत में किसी प्रकार का भय नहीं होता। भय नहीं होता तो भय से उत्पन्न होने वाला दुख भी नहीं होता। ऐसे ज्ञानी सदैव निर्भय है, कोई भी प्रसंग में, हर हालत में, किसी भी प्रकार के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में फेरफार हो जाए, उथल पाथल हो जाए, ज्ञानी सदैव निर्भय है। इसी स्वरूप के लक्ष्य से सर्व जीवों के प्रति साम्य भाव उत्पन्न होता है और जैसा अनुभव होने से सभी जीव मेरे जैसे हैं ऐसा साम्य भाव उसमें उत्पन्न हो जाता है। सभी जीवों का ऐसा ही स्वरूप ऐसा ज्ञान हो जाता है, साम्य भाव में आ जाता है। स्वरूप के लक्ष्य हुए बिना कैसे आएगा? जो अपने स्वरूप को नहीं जानता वो दूसरे आत्मा को कैसे जानेगा? दूसरे आत्मा को उसकी पर्याय रूप जानेगा, ये मेरे फलाने हैं, ये मेरे फलाने हैं, ये मेरे फलाने हैं, ऐसा ही जानेगा, स्वरूप रूप नहीं जानेगा। भीतर में निज स्वरूप का अनुभव होने से जगत के सर्व जीव मेरे समान हैं ऐसा सभी जीवों का स्वरूप ज्ञान हो जाता है और साम्य भाव हो जाता है। ऊंच नीच का भेद नहीं रहता और किसी भी प्रकार की स्वरूप को छोड़ करके अन्यथा कल्पना नहीं होती, दूसरी दूसरी कल्पना नहीं होती। कितना अंक है? 185। बोलो। मैत्री अपेक्षित काव्य मौका मिलने पर भेदूंगा देहों के अर्थ की बात है तो ये चार भावनाएं भाई मैत्री अनुकंपा प्रमोद और उपेक्षा। क्या प्रश्न है इसमें? हाँ ठीक है, तो क्या है कि कोई जीव जगत के कोई जीव दुखित अवस्था में होता है तो उनके पर सहज करुणा आती है, स्वाभाविक करुणा आती है। किस प्रकार से आती है? कि किसी भी प्राणी को दुख न हो, इसका उसको दुख नहीं हो ऐसा जो भाव है उसको करुणा भाव कहते हैं। ऐसा भाव सहज आ जाता है किसी को भी दुखी देख करके, वो बहुत स्वाभाविक है, होता ही है, मुमुक्षु को होता ही है, सज्जनों को भी होता है। किसी को भी दुखी देख करके उसको दुख हो नहीं हो, उसके दुख का अभाव हो जाए, वो सुखी हो जाए, ऐसी करुणा आई जाएगी। अब इसमें प्रश्न क्या है?
ठीक है, तो ये भावना अगर सब में होती तो पात्रता क्यों नहीं
है? इसे चारों भावना लिए हैं, चारों भावना का कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। जैसे कि मैत्री तो सर्व जगत पर निर्वीर बुद्धि, तो ऐसा नहीं होता है सबको निर्वैर में किसी के साथ वैर बुद्धि रहती है। जो इनका विरोध करता है, निंदा करता है, इनके परेशान करता है कोई, तो इनके प्रति वैर बुद्धि, जो वैर करने वाले के प्रति वैर बुद्धि सामान्य रूप से आ जाती है, वैरी के प्रति वैर ही हो जाता है। पर जिसको नहीं होता है उसको पात्रता होती है। तो वो तो क्या है कि संसार में मोह का दो पुत्र है, राग और द्वेष। तो राग करेगा वो द्वेष अवश्य किसी न किसी अवस्था में कर लेगा, राग पलट करके द्वेष स्थान कर ग्रहण कर लेगा, ऐसा बन जाता है। यहाँ वो बात नहीं है मैत्री मैंने किसी के पर राग करना, वो बात नहीं है मैत्री मैंने, यहाँ दूसरा अर्थ है। कि कोई भी जीव हमारे प्रति वैर विरोध वैमनस्य रखे, हम इनके प्रति नहीं रखें। हाँ, इनके प्रति हम कुछ नहीं रखें, वो भुला हुआ है, वो हमारी कोई एक अवस्था के प्रति द्वेष करता है। हमारे स्वरूप को तो वो जानता नहीं, न अपने स्वरूप को जानता है न हमारे स्वरूप को जानता है। पहले मैंने मुमुक्षु की भूमिका में पात्रता विशेष होने से ये संभवित है। हाँ, तो ये वो भावना कोई बार बार भाता है, ऐसे परिणाम बार बार करता है, तो उसको पात्रता उत्पन्न होती है, और पात्रता वाले के ऐसे परिणाम होते हैं, उतना लेना है। ATVI में उसका स्पष्टीकरण और है, मैत्री सब जीवों के प्रति हित चिंतन, हाँ आत्महित का चिंतन, वही सच्ची मैत्री है। मैत्री क्या इच्छती है कि अपने मित्र की भलाई इच्छता है। तो यहाँ तो सर्व जगत मित्र को मित्र बना दिया, तो जगत के सर्व जीवों का हित हो जाए, किसी का अहित न हो, ये मैत्री भाव है। प्रमोद गुणी जीव के प्रति उल्लास परिणाम, गुणवान जीवों के प्रति बहुमान उल्लास भाव, दूसरे के गुण देखते हुए हर्षित होना, जिसको स्वयं को गुण प्राप्ति की भावना या गुण की अभिलाषा होती है, उनको नियम से दूसरे के गुण देखकर हर्ष के परिणाम आएंगे ही आएंगे। और जिसको दूसरे के गुण देख करके मात्सर्य होता है, ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है, उनको अपने गुण प्राप्ति की भावना नहीं है, वो नियम बद्धवाते हैं। इसलिए गुणवान के प्रति प्रमोद, प्रमोद मैंने आनंद हर्ष आता है, वो पात्र जीव है। होता है,
ऐसा होता है, सब में
होता है।
तो हमारी जैसी दृष्टि होगी वैसे हमारी जाएगा नजर।
अच्छा है कि जिसको गुण की मुख्यता है वो गुण को देखेंगे, उसको गुण दृष्टि कहते हैं, और जिसको दोष की मुख्यता है, दोष दृष्टि है जिसकी, वो दोष को देखेंगे। पानी का गिलास अर्धा आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। जो आशावादी है कहेगा कि पानी का गिलास तो अर्धा भरा हुआ है, जो निराशावादी है वो कहेगा कि पानी का गिलास तो अर्धा खाली है, आधा खाली है। वो तो बात तो है सही, लेकिन किसको मुख्य करना, ये हमारी योग्यता को प्रदर्शित करता है। हम किसको मुख्य करते हैं वो हमारी योग्यता को प्रदर्शित करने वाले परिणाम है, और हमें किसी से लेना देना नहीं है। हमारी योग्यता अयोग्यता का लाभ नुकसान हमको होता है। करुणा का अर्थ लिए कोई भी जीव जन्म मरण से मुक्त हो ऐसा प्रयत्न करना, वो सच्ची करुणा है। दूसरा जीव भी जन्म मरण से मुक्त हो ऐसी भावना रख करके ऐसा प्रयास हो, ये वास्तविक करुणा है। नहीं करुणा होगी उसमें, परलक्षिपणा नहीं है। परलक्षिपणा और करुणा में क्या अंतर है वो प्रश्न निकालो आप, कि वो दोनों में क्या अंतर है। कि जो अपना हित करता नहीं और दूसरे के हित का विकल्प किया करता है वो परलक्षिपणा है, लेकिन जो स्वरूप को साधते साधते अपना हित करते करते दूसरे के हित का विकल्प उसको आ जाता है करुणा के कारण से, कि जगत में क्यों जीव दुखी होते है खाम खा। बात तो समझदारी की है, दुखी है तो ना समझ के लिए है, सुखी है तो समझ के लिए सुखी होते, कोई लेने देने की तो चीज नहीं, समझ को बदलनी है उतनी सी बात है, मिसकॉन्सेप्ट छोड़ना है और क्या बात है, सुखी हो जाएंगे इतने में तो। बाहर में तो कुछ लेने देने से सुखी दुखी होते हैं, यहाँ तो लेने देने का सवाल नहीं, सिर्फ उसकी सही समझ हो जाए वो सुखी हो जाएगा, और समझ के गलत समझ के मारे वो दुखी होता है, और कोई कारण नहीं है। मध्यस्था, निर्गुणी जीव के प्रति मध्यस्था, निर्गुणी कहो अवगुणी कहो, दोष करने वाले दूषित परिणाम वाले जो जीव होते हैं इनके प्रति द्वेष भाव नहीं रख करके मध्यस्था रखना, मध्यस्थ भाव से उसको देखना, द्वेष भाव से नहीं देखना, राग करके अनुमोदन करना नहीं पर द्वेष करके अपने परिणाम बिगाड़ना नहीं, दो में से एक भी नहीं करना, राग करना है न द्वेष भी करना है, उसके प्रति मध्यस्थ रहना, राग द्वेष रहित रहना, यही मध्यस्थता है। होते नहीं लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं, मुमुक्षु की दशा प्रयत्न की दशा है, और ज्ञानी की दशा उस पुरुषार्थ से ओरिएंटेड होती है, वही ज्ञान दशा है। तो जो ज्ञान दशा के अनुसार प्रयास करता है उनको ज्ञान दशा की प्राप्ति होती है, ज्ञान दशा नहीं है तो हम क्या करें वो बात नहीं है, ज्ञान दशा नहीं है तो उस दशा की प्राप्ति होवे ऐसा प्रयास करें वही मुमुक्षु दशा है, तो मुमुक्षु को ऐसा होता है, सहज होता है। कोऑर्डिनेशन वो है कि चारों प्रकार के परिणाम यथार्थ होने चाहिए, जनरल सभी जीवों के प्रति हित चिंतन, हित की भावना सबों की, गुणी भी होंगे संसार में अवगुणी भी होंगे, गुणी के प्रति प्रमोद भाव, अवगुणी के प्रति मध्यस्थ भाव, और कोई भी जीव जन्म मरण से मुक्त हो जाए ऐसी भावना रखना, चारों प्रकार के परिणाम पात्रता में अवश्य अवश्य होते हैं। राग के खाते में जाएगा क्योंकि हमारे परिवार वाले ये बात ही गड़बड़ वाली है, उसमें हमारे पराया का जो भेद छांटते हैं वो भेद हमारे पात्रता के प्रकरण में नहीं है, सब संसार के प्राणी हैं, चाहे परिवार के सदस्य हो चाहे कुछ भी हो, सब संसार में परिभ्रमण करते हुए प्राणी हैं, और सबके प्रति समान भाव होना जरूरी है। किस प्रकार के कांटेक्ट में रहते हैं ये बताइए, कांटेक्ट तो बहुत से प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के कांटेक्ट हैं?
हमारे साथ रहते हैं।
हाँ तो हमारे
परिणाम ज्यादा बिगड़ते देखते तो ज्यादा करुणा का भाव होता है,
ज्यादा राग का भाव आता है, करुणा का भाव नहीं है, वो राग का भाव है, उसको करुणा नहीं कहते, वो राग है, दूसरा कुछ नहीं है।
मैंने
क्या है कि इसके प्रति विशेष आए ऐसा नहीं होना है, सबके प्रति समान आना चाहिए, ज्ञानियों को समान आता है। वो तो ठीक है कि कोई हमारी बात किसी पे हम थोपेंगे नहीं, ये कोई थोपने की चीज नहीं होती है इसलिए, लेकिन भावना में तो ये रहते हैं कि सभी का कल्याण हो, वैसे इसका भी हो, उसका नहीं हो ऐसा थोड़ी ना होता है, भले ही नहीं सुनते हो लेकिन ऐसा भाव थोड़ी आएगा कि इसका कल्याण नहीं हो, ऐसा तो नहीं आएगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना।
अगर हम अपने आप को जीव रूप में लेंगे तो सब जीवों को सामान्य रूप से लेंगे,
बस
चाहे वो फिर परिवार वाले हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, चाहे अननोन पर्सन हो, चाहे सड़क में चलता हुआ
कोई भी हो,
कोई भी हो।
इस विषय में एक बहुत अच्छा पत्र है, शायद 460 से 65 तक में कोई पत्र है ऐसा, फिर मिल गया तो देख लो, बहुत अच्छा पत्र है।
हैं?
क्या उल्टा
हो? घरवाले को देख के लगता है इनका कल्याण हो, और उनको आत्मा के रूप में लगता है।
तो किस रूप में देखते हैं फिर?
उनको तो पर्याय दृष्टि से देखते हैं, दूसरे व्यक्ति है।
उसके ना पूर्व में एक समय पहले वो क्या था, इस तरह की भावना को सामने रख के बैठते हैं कि इसका ऐसा नेचर है, ये है, वो है, इस तरह से पूर्वाग्रह उसी कॉन्सेप्ट लेकर के बैठते हैं, पर्याय दृष्टि का
ही समझ। वो तो पर्याय दृष्टि है
जी, एक सेकंड पहले क्या था उससे कोई मतलब ही नहीं, वर्तमान में वो क्या करना चाह रहा है और वो किस भूमिका में है।
हाँ ठीक
है, चाहे पूर्व में उसने कितनी भी भूल की हो,
कोई भी हो,
कोई भी किया
हो, कोई भी किया
हो, वो देखने का हमारा विषय नहीं है।
बिल्कुल नहीं, किसी की क्षणिक पर्याय को नित्य नहीं रखें, क्षणिक पर्याय का ज्ञान क्षणिक ही होना चाहिए, क्षणिक पर्याय का ज्ञान नित्यता वाला ज्ञान करेंगे तो वो अज्ञान हो जाएगा, ज्ञान नहीं रहेगा। हाँ वो निकाल देने की, ऐसी विपरीतता है वो निकाल देने की है, दोष हमेशा क्षणिक ही होता है। नहीं मिला,
ये बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है, क्षणिक पर्याय को क्षणिक ही समझना चाहिए।
वो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, जो क्षणिक है उसको नित्य हम मान लें तो क्या बड़ी गलती नहीं है? क्या बहुत बड़ी गलती है ये। एक पत्र बहुत अच्छा है जिसमें लिखा है कि जैसे मेरे आत्मा का हित के मुझे भाव है, वैसा ही मुझे सगत सर्व जीव के प्रति हित का भाव है, जैसे मेरे परिवार के प्रति मेरे हित का भाव रहता है, वैसे ही सर्व जगत के प्रति हित का भाव रहता है, ऐसा करके लिखा है। परिवार और दूसरे जीव में अंतर नहीं है मुझे, बहुत अच्छा भाव लिया है, इतना अच्छा पैराग्राफ लिखा है पत्र के प्रारंभ में, बहुत साम्य भाव का विषय लिया है, आश्चर्य हो जाए ऐसा भाव लिया लिखा है कि इस आत्मा के लिए जो मैं सोचता हूँ वही मैं सबों के लिए सोचता हूँ। वो पत्र नंबर याद नहीं रहा कौन सा है, 469 है। जैसी दृष्टि इस आत्मा के प्रति है, वैसी दृष्टि जगत के सर्व आत्माओं के प्रति है, जैसा स्नेह इस आत्मा के प्रति है, मेरे आत्मा के प्रति जितना मुझे स्नेह है, वैसा स्नेह सर्व आत्माओं के प्रति है। जैसी इस आत्मा की सहजानंद स्थिति चाहते हैं वैसे ही सर्व आत्माओं की चाहते हैं। जो जो इस आत्मा के लिए चाहते हैं, जो जो बातें मैं मेरी आत्मा के लिए चाहता हूँ, वह सब सर्व आत्माओं के लिए चाहता हूँ। जैसा इस देह के प्रति भाव रखते हैं, अब देखो आत्मा के छोड़ करके देह के भाव, जैसा इस देह के प्रति भाव रखते हैं वैसा ही सर्वदेहों के प्रति भाव रखते हैं। जैसा सर्वदेहों के प्रति बर्ताव करने का प्रकार रखते हैं वैसा ही प्रकार इस देह के प्रति रहता है। इस देह में विशेष बुद्धि और दूसरे देहों में विषम बुद्धि होती है पात्रता देख करके, परंतु विषमता से अथवा विषय परिग्रह आदि कारण प्रत्यय से उसके प्रति वर्तन करने का आत्मा में कोई संकल्प प्रतीत नहीं होता। किसी की योग्यता विशेष देख करके कभी थोड़ी विशेष करुणा दिखने में आएगी, ये संभव है, लेकिन वो पारमार्थिक अभिन्नता है, इसमें कोई संयोग का कारण नहीं है। अविकल्प रूप स्थिति है, विशेष क्या कहूं, हमें कुछ हमारा नहीं है या दूसरे का नहीं है या कोई दूसरा हमारे लिए नहीं है, जैसे हैं वैसे हैं। आत्मा की जैसी स्थिति है वैसी स्थिति है। सर्व प्रकार की वर्तना निष्कपटता से उदय की है, कितनी सरलता से भाने से। जो भी हमारी वर्तना है निष्कपटता से उदय की है, सरल सरल सरल, जैसा हुआ वैसा हुआ, हो गया सो हो गया, नहीं हुआ सो नहीं हुआ, कोई कृत्रिमता नहीं, निष्कपटता से, कितनी सरलता है। सम विषमता नहीं है, सहजानंद स्थिति है। जहां वैसा हो वहां अन्य पदार्थ में आसक्त बुद्धि होना योग्य नहीं है, यानी होती नहीं है, नहीं होती है? होता है ऐसा, वो तो वो कम समझने वाले होने, उसको भी ऐसा लगे कि कितना अंतर्मुखी विचार है, कितना अंतर्मुखी विचार है, वो दिखने में आएगा। जैसे आंख यहाँ से निकाल करके अंदर रख दी है, जो भी चलता है उसको आउट कर देते हैं, बोल देते हैं, निष्कपटता से। वो कहां से बात चली कि साम्य भाव, सर्व जीवों के प्रति साम्य भाव उत्पन्न होता है। सर्व परद्रव्य से वृत्ति को व्यावृत करके आत्मा और क्लेश समाधि को पाता है। सर्व परद्रव्य से वृत्ति को छुड़ा करके, व्यावृत करके मैंने निवृत्त करके, आत्मा और क्लेश समाधि को, शांत समाधि भाव को प्राप्त करता है। जिन्होंने परम सुख स्वरूप परमोत्कृष्ट शांत शुद्ध चैतन्य स्वरूप समाधि को सदा के लिए प्राप्त किया, उन भगवंत को नमस्कार। और जिनका उस पद में निरंतर ध्यान रूप प्रवाह है, उन सत्पुरुषों को भी नमस्कार। वो भक्ति करते हैं फिर, कि जिन्होंने परम सुख स्वरूप परमोत्कृष्ट शांत ऐसा अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसमें लीनता, उस रूप जो समाधि मैंने उसमें लीनता, उसमें जो डूबे हुए रहते हैं, सदा के लिए ऐसी स्थिति जिसकी हो गई, ऐसे भगवंतों को नमस्कार। क्योंकि वो स्वरूप में डूबे हुए रहते हैं, स्वरूप समाधि से कभी बाहर निकलते नहीं है। ऐसे भगवंतों को नमस्कार। और जिनका उस पद में, उस ध्येय में निरंतर ध्यान रूप प्रवाह है, परिणाम का प्रवाह, परिणाम बहते हैं उस पद में, उसी ध्यान में जो हमेशा रहते हैं, ऐसे सत्पुरुषों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। सब आगे उसमें जो भी है, तीनों काल के। नहीं, उस दो दो बात लिया कि ऐसे जिसने परम समाधि दशा प्राप्त कर ली हमेश के लिए, ये तो भगवान हो गए, उन भगवंतों को तो मैं नमस्कार करता हूँ। और दूसरे नमस्कार करने योग्य कौन है कि सत्पुरुष है वो नमस्कार करने योग्य है। क्यों नमस्कार करने योग्य है कि ऐसी इस पद में उसका ध्यान रूप परिणमन का प्रभाव चलता रहता है, तो अपने आप स्वाध्याय के बाद लेते हैं। सुख धाम अनंत सुसंत चही दिन रात्र रहे तद ध्यान में, रात्रि दिन उसी ध्यान में वो रहते हैं कि मेरा जो सुख धाम है वो उसको ही मैं चाहता हूँ और उसी को, उसका ही मुझे ध्यान रहता है, उसी पद का मुझे ध्यान रहता है। तो ऐसे ऐसे ध्यान रहने वाले सत्पुरुषों को भी नमस्कार किया है, दोनों को नमस्कार किया है। अब जो आखिर का पैराग्राफ है, हाँ, अंतिम में भी, और अंतिम में आत्मभावना लिया है, परम पुरुषों को नमस्कार किया है, सर्वद्रव्य से, सर्वक्षेत्र से, सर्वकाल से और सर्वभाव से, जो सर्वथा अप्रतिबद्ध होकर निज स्वरूप में स्थित हुए उन परम पुरुषों को नमस्कार। यहाँ से शुरू करके आखिर में भी नमस्कार करते हैं और अब स्वरूप की भावना, आत्मभावना जिसको कहते हैं, वो आत्मभावना यहाँ लिखी है, बहुत सुंदर आत्मभावना लिखी है। ऐसी आत्मभावना जिसको होती है वो राग द्वेष को क्षय करके संपूर्ण वितराग हो जाते हैं। इसलिए कोई ये पूछते हैं कि क्या करें हम, क्या करें, क्या आत्मभावना में रहना, आत्मभावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान, ये दशा हो जाएगी। आत्मभावना में रहो नहीं फर्क पड़ता है, दूसरी भावना और आत्मभावना में फर्क पड़ जाता है। दो में अंतर कहाँ है, प्रकरण तो जो चलता है वही बात चलेगी ना।
ज्ञानी लोग इस तरह से आत्मभावना भा सकते हैं, परंतु मुमुक्षु ऐसे थोड़ी ना आत्मभावना
है। वो तो है ही, आत्मभावना तो जिसने आत्मा को देखा है, जाना है, उनके लिए है। जिसने देखा जाना नहीं, वो चीज की भावना तो कहाँ से भाई, वो बात तो है ही, वो बात रख करके है, उस वो बात को तोड़ करके नहीं, वो बात रख करके है। लेकिन यहाँ तो कृपालु देव 31 साल की उम्र में आत्मभावना में आए हैं, तो कैसे आत्मभावना में आए हैं, वो आत्मभाव में कैसे विभोर हो गए होंगे, तो इनके इस बैकग्राउंड के में से ये भावना के शब्द निकले, वचन निकले, अमृत जैसे वचन निकले, इसलिए कहते हैं कि ये भावना के वचनामृत है। बहुत अच्छी भावना भाई है। सर्व से सर्वथा में भिन्न हूं, मात्र ज्ञान स्वरूप होने से, सर्व से सर्वथा ज्ञानमय पने से मैं भिन्न हूं, ज्ञानमय होने से मैं भिन्न हूं, एक केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, एक हूं केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, यानी शुद्ध चैतन्य स्वरूप में मैं स्वरूप होने से मैं असंग तत्व हूँ, केवल कैसे केवल में असंगता लेना है कि मैं एक केवल असंग शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, अनेक प्रकार के द्रव्य भाव का संयोग होने के बावजूद भी मेरी असंगता वैसी की वैसी ही बनी रही है, मैं केवल एक असंग चैतन्य हूं। निगोद में प्रचुर कषाय कलंक के परिणाम हुए हैं, फिर मैं असंग चैतन्य रहा, मेरा चैतन्य किसी के साथ संग किया नहीं है, वैसा का वैसा रह गया और अनेक प्रकार के संयोग वियोग हुए, मैं असंग ही रहा, निर्लेप रहा, कभी किसी अन्य द्रव्य भाव से लिपायमान नहीं होता, मैं केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, परमोत्कृष्ट अचिंत्य सुख स्वरूप मात्र हूं। कैसा सुख स्वरूप हूं कि जिसका चिंतन नहीं कर सकते, जिसका अनुमान नहीं लगा सकते, विकल्प में जो नहीं आ सकता, ऐसा अचिंत्य परम उत्कृष्ट मैंने पूरा पूरा अनंत, परमोत्कृष्ट अनंत अचिंत्य अव्याबाध सुख स्वरूप हूं, उसको बाधा भी कोई पहुंचा सकते हैं, मेरे सुख को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते, पहुंच नहीं किसी को मेरे में, ऐसा मैं सुख स्वरूप हूं, मैंने अनंत सुख धाम हूं, अनंत सुख धाम ले लेना, और मात्र एकांत शुद्ध अनुभव रूप में हूं, एकांत शुद्ध प्रत्यक्ष अनुभव रूप में हूं, क्योंकि मेरे में मेरा वेदन प्रत्यक्ष चलता है और वेदन में किसी की मिलावट नहीं होती है, क्योंकि वेदन पर का हो नहीं सकता, ज्ञान पर का हो सकता, वेदन पर का नहीं हो सकता, तो मैं एकांत शुद्ध इसलिए लिया है, या एकांत शुद्ध लिया, एक एक शब्द के पीछे बहुत भाव भरा है, मैं एकांत शुद्ध अनुभव रूप हूं, यानी प्रत्यक्ष अनुभव रूप हूं, अनुभव कभी परोक्ष होता नहीं है, ऐसा मैं प्रत्यक्ष अनुभव रूप हूं, वहां विक्षेप क्या, ऐसी परिस्थिति में कौन सा विक्षेप हो सकता है, जब अव्याबाध सुख अनंत सुख धाम हो तो उसमें विक्षेप क्या, विक्षेप मैंने डिस्टर्बेंस, मेरे स्वरूप में कहीं भी हलचल होती नहीं है, जितनी भी चहल पहल है वो राग की है, मेरे वितराग स्वरूप में कोई चहल पहल नहीं है, एकदम शांत 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 परमोत्कृष्ट शांत, परम शांति का अमृतमयी शांति का स्वरूप है आत्मा, परम शांत सर्वोत्कृष्ट शांत ऐसा आत्मस्वरूप है, उसमें कोई हलचल विक्षेप खलभलाट खलबली कहीं नहीं होती, शांति का चैतन्य धीम है आत्मा, जम गया है, जैसे भगवान को मंदिर में देखते ना तो कैसे धीम हो गए हैं, वैसे ये भी अंदर में चैतन्य धीम है, एकदम शांति में जम गया है, जैसे घी जम जाता है, गुरुदेव जी बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे, जो शुद्ध घी होता है तो वो ऐसा होता है कि नाखून से जम जाता है, जाड़े के दिन में नाखून से कोई उसको उखाड़ने का कोशिश करता है तो घी लग जाता है उसमें, इतना हार्ड होता है कि उसको जैसे लकड़ा लकड़ी लग जाती है वैसे उनको खून निकल जाता है, फांस लग जाती है, जैसे लकड़ी पर हाथ घिसे तो फांस लग जाती है ना, वैसे घी की फांस लग जाती है, इतना हार्ड होता है, यानी निविड़ होता है, ऐसे शांति का निविड़ पिंड है आत्मा अंदर में, इतना जमा हुआ रहता है, मेरी शांति को कोई अशांति में परिवर्तित कर सकता नहीं है, क्योंकि पहुंच नहीं किसी की, वहां तक किसी की पहुंच नहीं है, इसलिए इसमें विक्षेप क्या, देखो संसार में प्राणी टेंशन से बाहर निकलते नहीं, यहाँ टेंशन का प्रवेश नहीं ऐसा कहते हैं, यहाँ शांति से बाहर निकलते नहीं, वो टेंशन से बाहर निकलते नहीं, यहाँ शांति से बाहर निकलते नहीं, ऐसी परिस्थिति है। अलौकिक, ये सब बातें अलौकिक बातें हैं। वहां विक्षेप क्या, विकल्प क्या, किसका विकल्प करना, निर्विकल्प स्वरूप हूं मैं, स्वरूप से ही निर्विकल्प हूं, फिर विकल्प किसका, क्यों, क्या जरूरत है विकल्प की, निर्विकल्प स्वरूप में एक विकल्प भी फांसी है, आता है द्रव्यदृष्टि प्रकाश में, मैं उतना निर्विकल्प हूं कि उसमें एक विकल्प भी फांसी लगती है, उसको स्वतः नहीं है बिल्कुल। सहज ही होता, जो होता है वो सहज होता है, वो तो 408 नंबर का पत्र है, उदय के क्रम में फेरफार करने की बुद्धि नहीं है, जो उदय आता है उसको सम्यक प्रकार से वेदन करना, यही तीनों काल के ज्ञानियों का सनातन आचरण है, 408 बोलिया। विकल्प क्या, भय क्या, भय तो डिक्शनरी में से ओमिट हो गया, शब्द ही निकल गया, भय जैसी कोई चीज नहीं है, भय किस बात का, कोई बात का भय नहीं होता है। भय क्या, खेद क्या, दुख क्या, शोक क्या, किसका खेद करना, कौन सा नुकसान होता है, क्या नुकसान होता है, वो भी सहज जाता है, और खेद होता है तो वो भी सहज है, है? उस खेत का भी जानने वाला है, वो अपने में स्थिर हो गया, आत्मस्थिति में कोई हलचल नहीं है, जो होता है मेरे से बाहर होता है, जहां मैं हूं वहां भी कुछ नहीं है, जहां मैं हूं वहां को कुछ है ही नहीं, मेरे से बाहर है, जैसा है ऐसा जानने में, सारा जगत मेरे से बाहर है, ऐसा विकल्प भी मेरे से बाहर है, खेद भी मेरे से बाहर है, मेरा अस्तित्व ही मैं इसमें महसूस नहीं करता, जहां मेरा त्रिकाल अस्तित्व स्वभाव है, गुण है, वहां मैं अपने को महसूस करता हूं, इसलिए एक समय के परिणाम में फेरफार करने की बुद्धि ज्ञानियों को नहीं होती, एक समय के परिणाम में फेरफार करने की बुद्धि नहीं है तो बाहर दूसरे पदार्थ के पर्याय में फेरफार करने का सवाल कहाँ रहता है, परिणाम में भी फेरफार नहीं करना है, क्योंकि मेरा अस्तित्व वहां नहीं है, ये 22 नंबर का पत्र है द्रव्यदृष्टि प्रकाश में, कि जहां मेरा अस्तित्व ही नहीं है उसमें मैं फेरफार कैसे करूं, ये फेरफार करने का सवाल नहीं रहता। मेरापना, मेरा अस्तित्वपना अथवा व्यापकपना तो केवल त्रिकाली ज्ञान घन अखंड चैतन्य में है, इस दृष्टि में पर्याय का पुरुषार्थ सहज स्वभाव है, पुरुषार्थ करूं वो विकल्प भी नहीं है, पर्याय अपेक्षा पुरुषार्थ हुआ, वृद्धि हुई, पुरुषार्थ किया ऐसा कहते हैं, यथार्थ में तो उक्त अस्तित्वपने की अखंड दृष्टि के बल पर पर्यायों का क्रम सहज ही अखंड की ओर बढ़ता रहता है, पुरुषार्थ आदि की इन पर्यायों में कोई उलट फेर करना नहीं पड़ता, कारण कि पर्याय में तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है, क्षणिक पर्याय में मेरा अस्तित्व नहीं है, अगर अस्तित्व हो तो क्षणिक पर्याय का नाश होने से मेरा नाश हो जाए, पर्याय में तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है कि मैं उसमें कुछ कर सकूं, जिसमें मेरा अस्तित्व नहीं इसमें मैं क्या कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा अस्तित्व तो त्रिकालीपन में है, ऐसा वो बात लिया है। अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व का अनुभव नहीं करते क्षणिक पर्याय में, उसको आकुलता रहती, वो कृत्रिमता है। दूसरी अवस्था क्या, बेखेद क्या, दूसरी अवस्था क्या, फिर आत्म भावना में आते हैं इतना प्रश्न उठा करके कि मैं निर्विकल्प हूं, मैं निर्विकल्प हूं, फिर से लिया, पहले आगे भी लिया था कि मैं निर्विकल्प हूं, यहां कहते हैं कि मैं निर्विकल्प हूं यानी परिपूर्ण अंतर्मुख स्वभावी हूं, इसलिए मुझे विकल्प नहीं होता है। परिपूर्ण अंतर्मुख स्वभावी हूं, निर्विकल्प में से ये निकलता है। तो मैं शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध परम शांत चैतन्य हूं, ऐसा भाव लिया है। मैं शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध लिया है, एकदम शुद्ध परम पवित्र हूं और परम शांत अमृतमयी शांति का चिद पिंड हूं, चैतन्य हूं, परम शांत चैतन्यमय हूं, एकदम पर शांति अनंत सुधामय, जे सुधा माने अमृत, अमृतमयी शांति, उस रूप मेरा चैतन्य तत्व है, ऐसा मैं चैतन्य हूं। मैं मात्र निर्विकल्प हूं, फिर से लिया, मैं मात्र निर्विकल्प हूं, मैंने अभेद हूं, निज अभेद स्वरूप में कोई भेद भी, भेद का भी विकल्प नहीं है, मैं मात्र निर्विकल्प हूं। मैं निज स्वरूप में उपयोग करता हूं, ऐसे मेरे स्वरूप में, अभेद स्वरूप में मैं व्याप्य व्यापक भाव से लीन रहता हूं और उसमें मैं सावधान हूं, मेरे स्वरूप में सावधान हूं, शरीर आदि और राग में मैं सावधान नहीं हूं, और व्याप्य व्यापक भाव से तन्मय होता हूं, लीन होता हूं। ओम शांति शांति शांति, ऐसे आत्म भावना से पर्याय में भी शांति छा जाती है और अशांति पैदा होती नहीं है। बहुत उत्कृष्ट आत्म भावना को पाई है, ऐसी आत्म भावना आत्मस्वरूप के लक्ष्य से और वर्तमान पर्याय में स्वसंवेदन पूर्वक ज्ञानी पाते हैं, मात्र विकल्प नहीं करते, ऐसे अंदर में आत्मस्वरूप ऐसा है इसका लक्ष्य रहता है और परिणमन में स्वसंवेदन के साथ ऐसे आत्मभावना की जो स्थिति है वो ज्ञानी को होती है और वो ऐसी भावना भाते भाते केवल ज्ञान में चले जाते, पहुंच जाते हैं, ऐसी आत्मभावना। यहाँ तक रख,
सत्यो